गान गुण हे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। गाथा नंबर 46 प्रवचन सार ज्ञान तत्व प्रज्ञापन ज्ञानाधिकार। गाथा पढ़ो।
यदि सोच हो वासु हो रहवदिया दासयं सहावेण संसारो बिण बेजदि सबे सिम जीव कायारं। यदि स्वयं स्वभाव से शुभ अशुभ रूप न परिणमे तो सर्व जीव निकाय के संसार भी नाशेद हो।
पिछली गाथा में ये कहा था कि अनंत भगवान के विहार होता है, दिव्य ध्वनि खिड़ती है, खड़े रहना होता है, चलना होता है, तो ये सारी क्रियाएं होते हुए भी उन्हें बंध नहीं होता, जबकि और उदय की क्रियाओं के साथ बंध होता है। तो ये भी उदय की क्रियाएं हैं, किसी कर्म के उदय से होती हैं। तो उन्होंने कहा कि वो आदि के सहित जो क्रियाएं उदय की होती हैं उनके बंद होता है, वो इनके मोहादि से रहित हैं, इसलिए इनके बंध नहीं होता। तो बंध तो छाय की क्रिया वालों के नहीं होता है, इसलिए कहते हैं उदय की होते हुए भी इनको छाय की ही क्यों ना मान लिया जाए, क्योंकि उदय की का फल नहीं मिल रहा और छाय की का इन्हें फल मिल रहा। ये बात कल हो गई थी। अब वो शिष्य कहता है कि ये तो अन्याय है, ऐसे ही हमारा भी चलना फिरना उठना बैठना और बोलना इनकी वजह से हमें बंध नहीं होना चाहिए। हमारी जी भी उदय की क्रियाएं हैं तो इन्हें छाय की मान लेना चाहिए। तो वो कहते ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि तुम्हारे मोहादि है। तो इतना सा प्रश्न है, इतना सा उत्तर है, लेकिन वो कहते हैं देखो, यदि जीव स्वयं स्वभाव से शुभ अशुभ रूप न परिणमे, ये जो इसे उदय की क्रिया बोलते हैं ना, तो उदय की माने उदय से होने वाली, तो फिर हम समझते हैं कि जो कर्म के उदय से क्रिया हो वो स्वाभाविक नहीं होती। तो वो कहता कि नहीं, ये क्रिया कर्म का उदय तो मात्र निमित्त है, लेकिन इसका उपादान तो आत्मा ही है ना। इसलिए एक स्वभाव होता है स्वभाव और एक होता है विभाव स्वभाव। पूज्य गुरुदेव श्री भी ऐसा फरमाते थे ना बार बार कि ये आत्मा राग रूप भी अपने विभाव स्वभाव के कारण ही परिणमता है। विभाव स्वभाव माने क्या, कि उस बस उस स्वभाव के साथ ये शर्त लगी है कि ऐसा कर्म का उदय होना चाहिए, तो ये जीव इस तरह से इस अनुसार परिणमेगा। तो कहते हैं बस ये शर्त लगी है, इसलिए तो हम विभाव स्वभाव कहते हैं। देखो, यदि जीव स्वयं स्वभाव से शुभ अशुभ रूप न परिणमे, शुभ अशुभ भाव रूप ये जीव स्वयं अपने स्वभाव से ही न परिणमे, तो सर्व जीव निकाय के संसार भी न सिद्ध हो, तो सारे संसारी जीवों को भी संसार की सिद्धि नहीं होगी। जैसे अनंत भगवान के संसार की सिद्धि नहीं होती, ऐसे सारे जीवों को भी संसार की सिद्धि नहीं होगी। जैन दर्शन में सब चीज स्यादवाद से है, अनेकांत से है, इसलिए उनने इसकी टीका लिखते ही पहले ही लिख दिया कि यदि एकांत से ऐसा माना जाए। ऊपर तो अकेला इतना ही है, यदि जीव स्वयं स्वभाव से शुभ अशुभ रूप न प्रण में एकांशित तो नहीं लिखा ना, लेकिन टीका में उन्होंने एकांत से जोड़ दिया। तो कहे तुमने क्यों जोड़ दिया, जो बात गाथा में है वही लिखना चाहिए। तो कहते फिर हमारा काम क्या है, यदि वैसी की वैसी कर दें तो हम टीकाकार नहीं है, फिर क्या हो गए हम अनुवादक। बस आज लोग अनुवादक और टीकाकार में अंतर नहीं समझते। वो अनुवादक भी ये अधिकार समझता है कि मुझे भी इतना इतना सब लिखने का अधिकार है, और टीकाकार को टीकाकार का और उसका भेद ही नहीं समझते हैं। टीकाकार की ये आवश्यकता है कि वो अपेक्षा बताए, बात को स्पष्ट करे, उसमें कोई प्रश्न खड़ा होता हो तो उसका जवाब दे। ये सब चीजें कहते हैं टीका टिप्पणी। ये टिप्पणी जानते हो जो नीचे लिखी जाती है ना, ये टिप्पणी कहलाती है, जो नीचे पंक्ति के नीचे लिखी जाती है। जो पहले क्या होता था कि शास्त्रों का इतनी बड़ी बड़ी टीकाएं लिखना सबके नहीं था, तो जो उसमें कठिन शब्द होते थे उनका अर्थ नीचे लिख देते थे, और नीचे लिखते थे उसे टिप्पणी कहते थे। वे शब्द अधिकांश पारभाषिक होते थे, माने ऐसा नहीं है कि हमने ऊपर जल लिखा और हमने नीचे पानी लिख दिया। वो ऐसे होते थे कि उनका स्पष्टीकरण एक दो लाइन में करना पड़ता था। तो जब हम उसका मूल टीका में लिखकर अर्थ में लिखकर विस्तार से खोलें तो वो टीका कहलाएगी, और हम एक दो लाइन में नीचे लिख दें तो उसे टिप्पणी कहते हैं। तो ऐसे कहते हैं ये टीका टिप्पणी। अब देखो वो कितनी अच्छी चीज थी। टीकाएं माने जो आचार्य ने कहा है उसके भाव को पूरी तरह खुलासा करना, तर्क युक्ति से सिद्ध करना, उसमें जो नए लगाए हम वो नए बताना, शब्दों की व्युत्पत्ति बताना, ये सब चीजें टीका में शामिल थी। और टिप्पणी माने तो फिर भी कोई बात ऐसी है कि वो गीता में टीका में शामिल नहीं की जा सकती है और उसका अर्थ बताना जरूरी हो तो नीचे उसमें बता देते थे। आजकल तो टिप्पणी में सिर्फ ये रह गया कि ये छंद किस शास्त्र का है, कौन से नंबर की गाथा है, कौन से कहां से वो प्रकाशित हुआ है, ये सब लिख देने का काम ही टिप्पणी में रह गया है। क्योंकि हम ऊपर की सब बातें उस टीका में जो हम लिखते हैं, अनुवाद जिसे अनुवाद भी कहते हैं, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, लेकिन पहले इस बात में बहुत अंतर था कि ये टिप्पणी है, ये टीका है, ये भाष्य है, ये महाभाष्य है, ये सारे भेद होते थे। तो किसको भाष्य कहते हैं, किसको महाभाष्य कहते हैं, है ना, वो अलग अलग। तो यदि एकांत से ऐसा माना जाए, अब एकांत से माने सर्वथा की बात नहीं है, ये है ना, यदि स्यादवाद से ऐसा मानो कि आत्मा शुभाशुभ भाव रूप परिणमित नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि एकांत से ऐसा मानो कि शुभाशुभ भाव रूप स्वभाव में आत्मा स्वयं परिणमित नहीं होता, यदि ऐसा मानो कि आत्मा स्वयं परिणमित नहीं होता तो यह सिद्ध होगा कि वह सर्वथा ही निर्विघात शुद्ध स्वभाव से अवस्थित है, माने वो फिर उसमें कोई दोष नहीं है, वो निर्दोष है, यानी फिर उससे बंध नहीं होगा। ऊपर समस्या क्या थी, वो छाई की मानी जाएगी, क्योंकि जिस चीज से हमें बंध नहीं हो रहा तो उसको हम स्वभाव ही माना जाएगा, और वो क्रिया जो होगी वो उदय की नहीं होगी, छाई की होनी चाहिए। तो वो कहते हैं कि कथनचित इसका स्वभाव है और कथनचित वो निमित्त भी है। तो वो ये कहते हैं कि स्वभाव भाव रूप जो परिणमित होता है आत्मा, यदि उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, माने वो स्वयं ही परिणमित नहीं होता, तो उसके फल में उसे बंध नहीं होना चाहिए, तो सभी जीव संसारी नहीं रहेंगे, सभी सिद्ध हो जाएंगे। तो सांख्य वाले ऐसा मानते हैं, इसलिए वो अपने आचार्य हैं, क्या नाम जयसेन आचार्य, वो तो आगे की लगा। टीका की चौथी पंक्ति, आचार्य जयसेन तात वृत्ति टीका में इस गाथा के भाव को नए विवक्षा से स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि सांखों जैसी मान्यता वाला कोई शिष्य है ना, वो आत्मा को बिल्कुल निर्दोष मानते हैं और जो कुछ कराती है वो सब प्रकृति कराती है। थोड़ी बहुत तो पढ़ी होगी तुम लोगों ने कि वे 25 तत्व मानते हैं, एक प्रकृति, एक पुरुष।